आगे सबक देखिए भाई, खासियात बाब इफ़ियाल। इस बाब की चार खासियात हैं, नंबर एक लुजूम, नंबर दो मुबालगा, नंबर तीन मुतावात मुजर्रद, नंबर चार मुआफ़क़त इस्तेफ़ाल। नंबर एक लुजूम, ये बाब ज्यादातर लाजिम इस्तेमाल होता है, जैसे अल इहदीदाबु, कुबड़ा होना, कुबड़ा होना, कमर का झुक जाना, अल इख्शीशानो, बहुत सख्त होना। कभी मुतादी भी इस्तेमाल होता है, जैसे इराव रई तुहु, मैं घोड़े की नंगी पीठ पर सवार हुआ। घोड़े पर तो वैसे अमूमन जीन लगाते हैं ना, फिर उस पर बैठते हैं, तो वैसे ही घोड़े पर बैठ जाने को क्या कहते हैं, इराव रई तुल्फारसा, मैं घोड़े पर बगैर जीन के सवार हुआ भाई। अच्छा आगे देखिए भाई, नंबर दो है मुबालगा। इस बाब में मुबालगा की खासियत बकसरत पाई जाती है, जैसे इशाओ शबातिल अर्जू, जमीन बहुत घास वाली हो गई। देखो मुबालगा है, बहुत घास वाली हो गई मुबालगा। इखलाओ लकसाओबू, कपड़ा बहुत पुराना हो गया। नंबर तीन है मुतावात मुजर्रद, जैसे सनई तुहु फसनाओना, भाई ये किताबत की गलती है, ठीक कर लें, फसनाओना, आखिर में या लिखी है, या नहीं है, नून और या है, और उस पर खड़ी जबर लिखें और वाव के ऊपर जजम लगाएं भाई, वाव के ऊपर जजम लगाएं और आगे नून या लिखें भाई, और उस पर खड़ी जबर डालें, फसनाओना। लिख लिया
जी।
सनई तुहु फसनाओना, मैंने उसको मोड़ा तो वो मुड़ गया। तो सना यसनी का माना होता है मोड़ना, और फसनाओना का माना मुड़ना। तो ये मुताविया है मुजर्रद का भाई, मैंने उसको मोड़ा तो वो मुड़ गया। आगे नंबर चार, मुआफ़क़त इस्तेफ़ाल भाई, जैसे इहलाउ लई तुहु बमाने इस्तह लई तुहु, मैंने उसको मीठा समझा, मैंने उसको मीठा समझा। तो इहलाउ लई तु और इस्तह लई तु का एक ही माना है, यानी बाब इस्तेफाल और बाब इफ़ईहाल एक दूसरे के हम माना हैं यहां पर। आगे देखिए खासियात बाब इफ़ईलाल और इफ़ईलाल, दोनों को इकट्ठा कर दिया भाई, दो बाब हैं ये, इफ़ईलाल और इफ़ईलाल, चूंकि खासियात एक जैसी हैं इसलिए इकट्ठा जिक्र कर दिया। इफ़ईलाल और इफ़ईलाल हर एक की चार चार खासियात हैं, नंबर एक लुजूम, नंबर दो मुबालगा, नंबर तीन लौन, नंबर चार हैब। नंबर एक लुजूम, ये दोनों बाब हमेशा लाजिम होते हैं। पिछले बाब बाब इफ़ईहाल में कहा था वो अक्सर लाजमी होता है, लेकिन कभी कभार मुतादी, और ये हमेशा लाजिम होते हैं भाई, इनमें से कभी भी मुतादी नहीं आएगा। तो कहते हैं नंबर एक लुजूम, ये दोनों बाब हमेशा लाजिम होते हैं, जैसे इहमर्रा, इहमर्रा भाई मीम पर शट डाला हुआ, ये रा पर होना चाहिए, इहमर्रा इफ़ईलाल से, और इहमार्रा इफ़ईलाल से। आगे तर्जमा लिखा है सुर्ख हुआ, भाई तर्जमा होगा बहुत सुर्ख हुआ, मुबालगा है इसमें, मुबालगा, तो माना होगा बहुत सुर्ख हुआ। नंबर दो मुबालगा, मुबालगा इस्वद्दा इफ़ईलाल, बहुत स्याह हुआ, इशहाबा ये बाबी इफ़ईलाल से है, बतदरीज सफेद हुआ या स्याही मिली हुई सफेद रंग वाला हुआ, यानी ऐसा सफेद जिसके अंदर क्या मिली हुई है, स्याही कुछ मिली हुई है भाई, तो उसके लिए बोलते हैं इशहाबा। आगे फायदा, बाब इफ़ईलाल में मुबालगा की खासियत बाब इफ़ईलाल से ज्यादा पाई जाती है भाई। एक है इफ़ईलाल, एक है इफ़ईलाल, आइन के बाद या भी है, देखो हुरूफ बढ़ गए, जब हुरूफ बढ़ गए तो माना भी बढ़ गया, मालूम हुआ इसके अंदर मुबालगा ज्यादा है भाई। खासियत नंबर 3 और 4 भाई लौन और ऐब, इन दोनों बाबों में रंग और ऐब के माना पाए जाते हैं लेकिन ज्यादातर रंग के माना अदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे इहमर्रा और इहमार्रा, खूब सुर्ख हुआ, बहुत सुर्ख हुआ, और इसी तरह इहवल्ला और इहवाल्ला, ज्यादा भेंगा हुआ, भेंगा होना ऐब है। इहवल्ला, अहवल कहते हैं भेंगा भाई, जिसकी आंखों में ऐब है भाई, आंख एक तरफ आंख मुड़ी हुई हो भाई, बात समझ में आया, तो ये ऐब है, तो ये बाब ऐब के लिए आते हैं, उसी से इहवल्ला और इहवाल्ला। आगे देखिए भाई, खासियात बाबे इफ़ईवाल, इफ़ईवाल इस बाब की 3 खासियतें हैं, नंबर 1 इख्तिजाब, नंबर 2 मुबालगा, नंबर 3 लुजूम। नंबर 1 इख्तिजाब भाई, इख्तिजाब पहले समझ लो, इब्तिदा की 2 सूरतें थीं आपने पढ़ी थी, क्या सूरतें, कौन सी 2 सूरतें, नंबर 1 शुरू ही इस बाब से आया है, मुजर्रद से आया ही ना हो, याद रखिए इसी को इख्तिजाब भी कहते हैं। अलबत्ता इब्तिदा की 2 सूरत भी थी, और वो क्या, मुजर्रद में और माना हो और मजीद में और माना, तो इब्तिदा में गोया 2 सूरतें आ गई थी, लेकिन इनमें से 1 सूरत जो है उसी को इख्तिजाब कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जो सुलासी मुजर्रद से आया ही नहीं है, सीधा मजीद फी वगैरह के अंदर आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, इब्तिदा भी कहेंगे और इख्तिजाब भी कहेंगे भाई। तो गोया इख्तिजाब और इब्तिदा में उमूम व खुसूस मुतलक की निस्बत है, हर इख्तिजाब इब्तिदा है, क्योंकि इख्तिजाब की तो एक ही सूरत है और वो उसी को इब्तिदा भी कहते हैं, तो इख्तिजाब तो इब्तिदा है लेकिन हर इब्तिदा इख्तिजाब नहीं है, बात समझ में आ गई। देखिए भाई, नंबर 1 इख्तिजाब, मुक्तजब लुगत में कटे हुए को कहते हैं और इस्तेलाह में वो मादा और माखज है जिसकी असल या मिसल असल ना हो बल्कि शुरू से उसकी वजह इसी वजन पर हुई हो और ऐसे हर्फ इल्हाक और हर्फ जायद से खाली हो जो किसी माना के लिए हो। तवज्जो है, शुरू से ही इसकी वजह इसी वजन पर हुई है, यानी मजीद फी से ही आया है, सुलासे मुजरद से आया ही नहीं, और ऐसे हर्फ इल्हाक और हर्फ जायद से खाली हो जो किसी माना के लिए हो। भाई आप जानते हैं कभी कभार सुलासी के अंदर कोई हर्फ बढ़ाकर उसे रुबाई के वजन पर ले जाते हैं और उसे मुलहक कहते हैं। क्या कहते हैं, मुलहक कहते हैं, जैसे जिलबाब से क्या बना लिया, जल बाबा, और इसी से आगे तजल बाबा बाब बना लिया, क्या बना लिया, तो यहां पर ये बाब, ये असल में इसका मादा तो है जल अबा, तो एक बाब बढ़ा दी किस लिए, इल्हाक के लिए। इन बाबों में ये जो इनमें इख्तिजाब है उनमें इल्हाक के लिए कोई हर्फ नहीं बढ़ाया गया, बात समझ में आ रही है, इल्हाक के लिए कोई हर्फ नहीं बढ़ाया होता। नीस ये कहते हैं ऐसा हर्फ जायद जो किसी माना के लिए हो वो भी इसमें नहीं होता। तवज्जो है, एक तो जो मुक्तजब है उसमें कोई हर्फ इल्हाक के लिए नहीं होगा और दूसरा उसमें कोई जायद हर्फ किसी माना के लिए नहीं होगा कि पहले किसी एक बाब से आता था और फिर उसमें कुछ हुरूफ बढ़ाकर दूसरे बाब में ले गए, जैसे खराजा, इसमें एक हर्फ बढ़ा दिया, अखराजा कहां ले गए, बाबे इफ़ाल में ले गए, किस लिए, एक खास माना हासिल करने के लिए, और वो क्या था, मुतअद्दी बनाना, जैसे जलासा से क्या बना लिया, अजलासा, हमजा बढ़ा दिया, वैसे ही बढ़ाया या किसी माना के लिए बढ़ाया, माना, क्या माना था, मुतअद्दी बनाना मकसद था। तो यहां ऐसा नहीं होगा, यहां वो इसी बाब से आया है, इसमें कोई हर्फ इल्हाक के लिए भी नहीं होगा और इसमें किसी हर्फ को माना के लिए भी बढ़ाया नहीं गया होगा, बात समझ में आ गई। वैसे तो इसमें जायद हुरूफ होंगे, ये नहीं कि जायद नहीं है, मतलब यह है कि पहले एक बाब में आए फिर दूसरे बाब में आए, ये आया ही सीधा एक बाब से है, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि इसमें एक हर्फ इस मकसद के लिए बढ़ाया है। सूरत समझ में आ गई। हालांकि जल बाबा और तजल बाबा, देखो ता बढ़ा दी या नहीं, बाब तफालुल में ले गए तो वहां एक ता बढ़ा दी माना हासिल करने के लिए कि मुतअद्दी से क्या बन जाए, लाजिम बन जाए। जल बाबा का माना चादर पहनाना और तजल बाबा का माना खुद चादर पहनना, तो देखा लाजिम बनाने के लिए ता बढ़ा दी। यहां ऐसा नहीं है, ये सीधा बराह रास्त उसी बाब में इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें कोई हर्फ इल्हाक के लिए भी नहीं होता, यानी ये मुल्हक अबवाब में से भी नहीं होगा, और नीज इसमें कोई हर्फ माना की ज्यादती के लिए भी हर्फ होंगे, लेकिन फिर उन्हीं पर कोई और ज्यादती की जाए, तब्दीली की जाए, किसी नए बाब में ले जाया जाए, ऐसा यहां पर नहीं होगा। बात समझ में आ गई। वरना इफ़ाउवाल इसमें जायद हुरूफ हैं कि नहीं है, इफ़ाउ वाला क्या क्या जायद है, हमजा भी शुरू में जायद है और वो भी जायद है, फा आइन लाम तो मादा है ना, तो इफ़ाउ वाला, तो यहां पर वो भी जायद, हमजा भी शुरू में जायद, लेकिन इसी में फिर मजीद तब्दीली करके किसी और माना के लिए किसी और बाब में ले जाएं, वो यहां पर नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये माना नहीं कि इसमें जायद हर्फ है ही नहीं, जायद हैं तो, लेकिन ये कि इनको ये पहले नहीं थे और फिर लेकर आए, ऐसा नहीं है, इनको बराह रास्त इसी बाब से इस्तेमाल किया। देखिए भाई, तजब लुगत में कटे हुए को कहते हैं और इस्तेला में वो मादा और माखज है जिसकी असल या मिसले असल ना हो, बल्कि शुरू से उसकी वजह उसी वजन पर हुई हो और ऐसे हरफे इल्हाक और हरफे जायद से खाली हो जो किसी माना के लिए हो, जैसे इजलव वदा खूब तेज चला। मुक्तजब को मुर्तजल भी कहते हैं, मुक्तजब को मुर्तजल भी कहते हैं, यानी गैर मनकूल। मुर्तजल का क्या माना, गैर मनकूल, तवज्जो है, यानी ये किसी और बाब से नकल होकर नहीं आया कि पहले सुलासी मुजर्रद में था और फिर वहां से मनकूल होकर कहां आ गया, सुलासी मजीद में, नहीं नहीं, ये गैर मनकूल है, मुर्तजल है। बात समझ में आ रही है? तो मुर्तजल का क्या माना, गैर मनकूल, यानी ये नकल नहीं किया गया, सीधा बराह रास्त इसी बाब में आया है। तो मुख्तजब को मुर्तजल यानी गैर मनकूल भी कहते हैं, यानी ये सुलासी मुजर्रद से मनकूल नहीं है। आगे देखिए, दूसरे लफ्जों में यूं भी ताबीर कर सकते हैं कि मुख्तजब वो मादा है जो मुजर्रद के बगैर इब्तिदाअन मजीद फी में इस्तेमाल हो, जैसे इजला वजा कि इसका मुजर्रद मुस्तामल नहीं। और एक और बात याद रखना, ये बाब अक्सर मुख्तजब होता है, ये बाब यानी इस बाब से जो लफ्ज आएंगे अक्सर वो मुक्तजब होंगे, इब्तिदाअन इसी बाब से आएंगे, मुजर्रद में मुस्तामल ही नहीं। तो अक्सर ऐसा होगा, लाजिम नहीं है कि जो भी सीगा इस बाब से आए, जो भी कलिमा इस बाब से आए, आप कहें उसमें इक्तिजाब होगा, नहीं नहीं, अक्सर होगा, लेकिन हो सकता है कभी इक्तिजाब के बगैर भी हो गई, यानी सुलासी वगैरह में भी इस्तेमाल हुआ है और फिर इसमें भी इस्तेमाल हुआ, तो ये बाब अक्सर मुक्तजब होता है, मगर इसके साथ इक्तिजाब लाजिम नहीं है। नंबर दो, मुबालगा, इजलव वजल फारासु में मुबालगा भी है, घोड़ा तेज दौड़ा। देखो, एक है दौड़ना और एक है तेज दौड़ना, ये मुबालगा आ गया भाई, घोड़ा तेज दौड़ा। नंबर तीन है लुजूम, बाब इफ़ाउवाल अक्सर लाजिम इस्तेमाल होता है, जैसे इजला वजा, कभी मुतअद्दी भी इस्तेमाल होता है, जैसे इअला वतल बाईरा। देखो पाना क्या लिखा है, ऊंट की गर्दन पर लटक कर सवार हुआ, ये मुतअद्दी है भाई, ऊंट ऊंचा जानवर है तो इस पर सवार होने के लिए इसको उमूमन बिठाया जाता है, फिर इस पर सवार होते हैं, लेकिन देहाती लोग जो होते हैं वो माहिर होते हैं, नौजवान जो हैं वो ऊंट पर, ऊंट की गर्दन से लिपट कर उस पर ऊपर की तरफ सवार हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं, इसको क्या कहते हैं अरबी में, इलिवात कहते हैं, इलिवात। कोई शख्स कहता है मैं इस तरह गर्दन पर लिपट कर, फिर ऊंट पर खड़े खड़े ऊंट की गर्दन पर लिपट कर मैं उस पर सवार हो गया, तो इसको क्या कहेंगे अरबी में, इलिवत तुल बईरा, मैं ऊंट की गर्दन से लिपट कर ऊंट पर सवार हो गया। माना समझ में आया? ये माना जैसे इलाउ वतल बाईरा ऊंट की गर्दन पर लटक कर सवार हुआ, ये मुताअद्दी है। आगे देखिए भाई, खासियात रुबाई मुजर्रद। रुबाई मुजर्रद का एक ही बाब है फालला। इस बाब की खासियात बहुत हैं, चंद मशहूर खासियतें मुदर्रा ज़ैल हैं। देखा, इस बाब की खासियतें बहुत हैं, बहुत ज्यादा खासियतें हैं। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, ये खासियात जितनी आपको बतलाई जा रही हैं इन्हीं में बंद नहीं है, और भी खासियात हैं, लेकिन मोटी मोटी और मशहूर खासियतें जिक्र करते चले जा रहे हैं। आगे देखिए, चंद मशहूर खासियतें मुदर्रा ज़ैल हैं। नंबर एक कसर, नंबर दो इल्बास माखज, नंबर तीन इत्तेखाज, नंबर चार तआम्मुल, नंबर पांच मुतावात खुद। नंबर एक कसर, कसर किसे कहते थे? एक लंबे जुमले को मुख्तसर करके उसका एक सीगा बना लिया जाए, एक बाब बना लिया जाए। जैसे देखिए भाई किताब पर, जैसे बसमला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, या अरबी मियों को आयकाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि इनमें कौल का माना होता है, मैंने बतलाया था। हल्लाला का क्या माना था? कालला इलाहा इल्लल्लाह। कब्बरा का क्या माना था? قال الله اكبر। और सबहतु क्या माना? आई कुल तो सुबहान अल्लाह। देखा, काला का लफ्ज लाना पड़ेगा इसमें। तो बसमला का क्या माना? قال بسم الله الرحمن الرحيم। इसी तरह है हमदला, आई قال الحمد لله رب العالمين हमदला हमदला। इसी तरह है हौकला, ऐ قال لا حول ولا قوة إلا بالله حوقلا। बात समझ में आ गई? तो ये सारे कसर हैं, इस इन सब में कसर है। और ये माना नहीं कि आप भी बना सकते हैं, नहीं, ये अरबों से हमने इसी तरह सुना है, जो सुने हैं वो ही बाब इस्तेमाल कर सकते हैं, मजीद अपनी तरफ से नहीं बना सकते। नंबर दो है इल्बास माखज, जैसे बरका तुहा, मैंने उसको बुरका पहनाया। इसका माखज बुरकुन है भाई, बुरकुन बा पर भी जम्मा है और काफ पर भी जम्मा है, जबकि रा साकिन है, बुरकुन, तो उसी से बाब बना लिया बरका। और बरका का क्या माना? इल्बास माखज, माखज पहनाना, क्या माना? बुरका, बुरका पहनाना भाई। नंबर तीन है इत्तेखाज, जैसे कंतारा, उसने बहुत सारा माल जमा किया, माखज कंतारा तुन है। माखज क्या है? हां, तो बहरहाल इसका ज्यादा बेहतर तर्जमा यह है, कांतारा का माना है वो गोल पुल बनाना, गोल जिन नीचे से गोलाई हो। भाई आपने देखो, अगर पुराने पुल, पुराने पुल उनके जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जिन सुतूनों पे पुल खड़ा होता है, तो वो एक सुतून से दूसरे सुतून तक दरमियान में यूं गोल बना होता है, जैसे मस्जिद की मेहराब नहीं होती, फिर उस दूसरे उस सुतून से अगले सुतून तक इसी तरह गोल ऊपर की तरफ गया होता है। ये जो पुल है खास तरीके से गोलाई में बना हुआ, इसको कहते हैं कांतारा तुन भाई, अरबी में क्या कहते हैं? कांतारा तुन। तो ऐसा पुल बनाना, इसी से फेल बना लिया कांतारा, क्या माना? ये गोलाई वाला पुल बनाना। माना समझ में आ गया भाई? बहरहाल इसने बहुत इन्होंने तर्जमा किया, उसने बहुत सारा माल जमा किया, ये तर्जमा भी इसका आता है, लेकिन कंतरा, कंतरा तुन उस पुल को कहते हैं। नंबर चार है तामुल, तामुल, तामुल किसे कहते थे भाई? माखज को काम में लाना, जिस चीज के लिए वो बना है उसी काम में उसको लाना। देखिए भाई, माखज को काम में लाना, जैसे जाफरा सऊबा, उसने कपड़ा जाफरानी किया, यानी जाफरानी रंगा। ये जो जाफरान जानते हो भाई, ये घास नुमा चीज है जर्द रंग की भाई, और इसको खानों वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं रंग और खुशबू के लिए, और नीज इसको कपड़े वगैरह को रंग देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जर्द रंग भी होता है और खुशबू भी होती है। तो जाफरा सऊबा, उसने कपड़ा जाफरानी किया, यानी जाफरान जैसा रंग लिया कपड़े को, माखज जाफरान है, तो उसी को उसी को देखो काम में लिया, इस्तेमाल कर लिया। जाफरान भी किस लिए होता है? रंग और खुशबू के लिए उसी को अमल काम में ले आए। नंबर पांच है मुतावात खुद, अपनी मुतावात के लिए। मुतावात किसे कहते थे कि एक फेल पहले जिक्र हो और दूसरा एक फेल लाकर के उसके मुताविया फेल लाकर उसके असर को जाहिर करें कि मफूल ने फाइल के असर को कबूल कर लिया है। तो ये अपने बाद दोबारा आ जाता है, अपनी ही मुतावात के लिए आता है। जैसे देखो मिसाल, जैसे गतराशल्लैलु बसरहु फगतराशा, गतराशल्लैलु बसरहु, रात ने उसकी आंख को तारीख बना दिया, फगतराशा, तो वो तारीख हो गई। दोनों बाब एक ही बाब है, गतराशा भी और फगतराशा एक ही बाब है। तो ये अपनी ही मुतावात के लिए आया। मालूम हुआ गतराशा के दोनों माना आते हैं, तारीख करना भी और तारीख होना भी, तारीख करना भी और तारीख होना भी, तो दोनों को इस्तेमाल कर लिया। पहला जो कहा गतराशा लैलु बसारहु, देखो मफूल आगे आ रहा है, मालूम हुआ ये मुतादी है। और अगला जो है फगतराशा, ये क्या है, लाजिम है। गतराशा लैलु बसारहु, रात ने उसकी आंख को तारीख किया, फगतराशा, तो वो तारीख हो गई। क्या माना तारीख किया भाई, तारीकी होगी, तारीकी में दिखाई कम देता है, बिनाई कुछ कम, बिनाई जाहिर सी बात है कम हो जाएगी, जितनी तारीकी ज्यादा होगी उतना ही दिखाई नहीं देगा, और थोड़ी बहुत रोशनी होगी तो दिखाई देगा। तो फगतराशल लैलु, बस रात ने उसकी आंख को तारीक बनाया, यानी कोई तारीकी ज्यादा होगी किसी रात में, चांद ना निकला हुआ हो तो तारीकी ज्यादा होती है रात को। आगे भाई फायदा, इस बाब की लफ्जी खासियत यह है कि अक्सर सही और मुजाफ से इस्तेमाल होता है। जो भी कलिमात इस बाब से आएंगे वो अक्सर सही होंगे या मुजाफ होंगे, या इसी तरह महमूज भी आते हैं इस बाब से, अलबत्ता वो कलील हैं भाई। जैसे जलजला, देखो ये मुजाफ है, हस हासा ये भी क्या है मुजाफ है, वस वसा ये भी क्या है मुजाफ, तो सही भी हैं और मुजाफ भी हैं, क्योंकि कोई हर्फ इल्लत या हमजा वगैरह नहीं है। जलजला, जलजला बरपा करना भाई, हरकत देना। हस हसा, जाहिर होना, जाहिर होना। वसवसा, वसवसा डालना, वहम डालना। आगे देखिए भाई, अबवाब रुबाई मजीद फी खासियात बाब तफालुल, इस बाब की तीन खासियतें हैं, नंबर एक इक्तेजाब, नंबर दो तहव्वुल, नंबर तीन मुतावात फालला। नंबर एक इक्तेजाब, जैसे तहबरासा नाज से चला, कोई नाज और नखरों के साथ चले तो अरबी में क्या कहते हैं, तहबरासा फुलानुन, वो बड़े नाज और नखरों से चला। ये मादा मुजर्रद में मुस्तामल नहीं, और ऐसे हर्फ इल्हाक और जायद से खाली है जो किसी माना के लिए हों। वो इक्तेजाब की तफसील बयान कर दी। इक्तेजाब में भी क्या होता है, मुजर्रद में इस्तेमाल नहीं होता और हर्फ इल्हाक और जवायद से खाली होता है। नंबर दो तहव्वुल, फाइल का ऐन माखज या मिसल माखज होना, जैसे तजंदकर रजुलु, वो आदमी जिंदीक बन गया। माखज जंदका है, माखज क्या है, जंदका का माना है बददीन होना, बददीन होना, तो उसी से फेल बना लिया तजंदकर रजुलु। आप उमूमन पढ़ेंगे भाई कि जिंदीक जो है उसकी तौबा कबूल नहीं होती, जिंदीक की तौबा, और ये बड़ा महल्ले इश्काल है। तौबा तो हर एक की कबूल अल्लाह फरमा लेते हैं, कोई सारी जिंदगी शिर्क करता रहे, आखिर उम्र में आकर शिर्क को चंद लम्हों के लिए छोड़ दिया, तौबा कर दिया और साथ ही उसकी मौत आ गई, वो किधर जाएगा, तौबा कर ली इस्लाम पर वो आ गया, शिर्क छोड़ दिया, तो तौबा तो शिर्क वाले की भी माफ हो जाती है, फिर ये क्या माना जिंदगी की तौबा कबूल नहीं। इश्काल समझ में आ रहा है, तौबा तो हर एक की कबूल है, बस आए वो हिदायत सीधे रास्ते की तरफ आए भाई, तौहीद की तरफ आ जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान ले आए और दीगर जो इस्लामी अकायद हैं उन सबको मान ले, तो बस सारे गुनाह खत्म। लेकिन कहते हैं जिंदीक की तौबा कबूल नहीं होती, और उलमा ने इसकी मुख्तलिफ वजूहात और तकारीर इस पर की हैं। वालिद साहब रहमहुल्ला इसकी अजीब तकरीर फरमाते थे। वो फरमाते थे जिंदीक वो शख्स है जो बजाहिर इस्लाम का काम कर रहा है, उसका दावा क्या है, मैं किसका काम कर रहा हूं, इस्लाम का, लेकिन दरअसल वो इस्लाम की जड़ें काट रहा है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसका दावा यह होता है मैं इस्लाम का काम कर रहा हूं और बड़े फख्र तकब्बुर के साथ इस काम को करता है कि मैं इस्लाम की खिदमत सरंजाम दे रहा हूं। तो जब ये इसके जहन में यह होगा कि मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं तो वो कभी तौबा करेगा? जी वो तो तौबा करेगा ही नहीं, उसका तो ख्याल ही है कि मैं तो ठीक रास्ते पे रहूं, मैं तो ठीक चल रहा हूं, मैंने तो गलती कोई नहीं की। तौबा तो तब की जाती है जब इंसान को किस चीज का ख्याल आए, गलती का ख्याल आए कि मैंने तो गलत किया है। तो चूंकि इसका गुमा ख्याल ही ये होता है कि मैं तो इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं, हालांकि दरअसल वो क्या कर रहा है, इस्लाम की जड़ें खोखली कर रहा है, इस्लाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता जा रहा है। तो ऐसे शख्स को जिंदगी कहते हैं और इसकी तौबा कबूल नहीं, क्योंकि तौबा करता ही नहीं, इसको ख्याल ही नहीं आता कभी कि मैंने गलत किया है कुछ भाई। जैसे परवेज एक शख्स गुजरा है, गुलाम अहमद परवेज भाई, मुनकिरे हदीस था, हदीस का इनकार करता था, हदीस का इनकार करता था, और उसने तफसीर भी लिखी और बड़े बड़े दिन रात कुरान की तफसीर करता, दीनी तकारीर करता, और जैसे इस्लाम की बड़ी खिदमत कर रहा, उसने कई किताबें लिखी और इंसान हैरान रहता है ऐसी जबरदस्त किताबें, लेकिन साथ साथ वो अपनी वो गुमराही के बीज भी बोता चला जाता है, जो उसको पढ़ता है मुतासिर होता है भाई। उलमा ने इसको, ये मुनकिरीन हदीस को काफिर करार दिया है भाई। तो ये इसी हालत में इसका इंतकाल हुआ, तो इसका ख्याल तो था मैं सबसे बढ़कर मैं सही तरीके से दीन की खिदमत कर रहा हूं, बाकी और कोई दीन की खिदमत आज के जमाने में उलमा वगैरह नहीं कर रहे। तो कभी इसको तो तौबा का ख्याल भी नहीं आया, तौबा का ख्याल आता तो तौबा करता। तो ये है जिंदगी की मिसाल भाई, देखा, बगैर तौबा के ही चला गया। यह जमाने हाल में दूसरी मिसाल ले लो, जावेद अहमद गामिदी भाई, वो इस्लाम को बड़ा जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसका ख्याल यह है कि मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं, मेरे जैसी खिदमत तो आज तक किसी ने इस्लाम की नहीं। बात समझ में आ रही? ये ऐसा अजीब शख्स है, ये कहता है ये जो गाना बजाना और म्यूजिक है और ये चीजें जायज हैं भाई, ये कहता है दाढ़ी रखना कोई सुन्नत नहीं है, दाढ़ी रखना कोई सुन्नत नहीं है, ये अरबों की आदत थी, वो दाढ़ी रखा करते थे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखी, और इस तरह की वो बातें करता है, नई नई चीजें जिक्र करता है, अपने ख्याल में वो इस्लाम की जबरदस्त खिदमत कर रहा है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता वो कभी तौबा कर ले। हां अगर कभी जिंदगी में ख्याल आ गया फिर तो तौबा करे, फिर तो तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन जिस हालत में वो चल रहा है उसका तो ख्याल है मैं सबसे ज्यादा इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं, और लोगों पर भी उसका बड़ा असर है, बड़ी जबरदस्त जुबान है, ये जुबान अजीब चीज है भाई। आप पूरी दुनिया में गौर कर लें इस वक्त, सब लोग इस जुबान के पीछे हैं, जिसको अल्लाह ने अच्छा बोलने का मलका दे दिया सारे उसकी तारीफ करते हैं, और फिर इसी जुबान से वो चाहे तो दीन का काम करे, चाहे तो वो क्या करे, दुनिया का काम करे, दोनों, चाहे सीधे रास्ते पर चले चाहे गुमराही की तरफ चला जाए। ये गुमराह लोगों के साथ बहुत लोग होते हैं, क्यों, उनके पास भी जुबान होती है, वो बोलते हैं भाई, सुनने वालों पर असर होता है उनके बोलने का भाई। तो ये जुबान ऐसी चीज है कि जिसको अल्लाह ने जुबान दे दी, जबरदस्त बोलना दे दिया, फिर उसने इसको दीन के लिए इस्तेमाल किया तो बहुत दीनी काम कर जाएगा, और अगर उसने इसको गुमराही की तरफ इस्तेमाल किया तो बड़ी गुमराहियां फैलाता चला जाएगा भाई। तो आज के जमाने में जावेद अहमद गामिदी इसी तरह का काम कर रहा है, अल्लाह ताला उसके शर से तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए भाई, और उसका दावा यह है मैं दीन की खिदमत कर रहा हूं। तो इस ये है जिंदगी की मिसाल, तो यानी ये गुमराह है भाई, गुमराह। आगे देखिए भाई किताब पर, नंबर 3, मुतावात फाला, जैसे दहरज तुहू फता दहराजा, दहराजा आपने पढ़ा भाई अबवाबु सर्फ में भी, पत्थर को ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़काना, पहाड़ के ऊपर से एक आप पत्थर फेंकते हैं वो घूमता घूमता नीचे की तरफ आता है, इसे कहते हैं लुढ़कना। तो मैंने पहाड़ से पत्थर लुढ़काया बस वो लुढ़क गया। तो अरबी में कैसे कहेंगे, दहराजतुहु फता दहराजा, तो दहराजतुहु फता दहराजा, तो दहराजा किसका मुताबिअ है, दहराजा का, यानी बाबे तफालुल किसका मुताबिअ बन रहा है, फालाला का भाई, फालाला, ये माना मुतावाते फालाला, जैसे दहराजतुहु फता दहराजा, मैंने पत्थर लुढ़काया पस वो लुढ़क गया। आगे देखिए भाई, खासियात बाबे इफ़इन लाल और इफ़इन लाल। अच्छा, ये दोनों बाब इकट्ठे कर दिए भाई, क्योंकि दोनों की खासियतें एक जैसी हैं तकरीबन। इन दोनों बाबों की तीन तीन खासियात हैं, नंबर एक लुजूम, नंबर दो इक्तेजाब, नंबर तीन मुतावात फालला। नंबर एक लुजूम, जैसे इस अन जारा इफान लाला बाब है, देखो वो बह गया, इस अन जारा का क्या माना, वो बह गया पानी में। और इसी तरह आगे है एक फहर रन नजमो, ये बाबे इफ़इल लाल है, एक फहर्रा इफ़इल ला यफ़इल इफ़इल लाल। अच्छा, और जैसे एक फहर्रा नजमु, ये इफ़इल ला है, देखो इंतहाई तारीकी में सितारा चमक उठा, चमक गया, देखो ये लाजिम है, वो बह गया, बहना भी लाजमी है, मफूल नहीं चाहिए, और सितारे का चमकना भी लाजमी है, इसके लिए मफूल नहीं चाहिए। नंबर दो है इक्तेजाब, जैसे इरन फाता मुनकबिज हुआ, तुर शुरू हुआ, मुनकबिज होना यानी तबीयत बंद होना, एक है इंसान की तबीयत खुली हो, खुश हो, तो उसके चेहरे पर बशाशत होती है, चेहरे से ही पता लगता है इंसान खुश है भाई, चेहरा चमक रहा होता है। और जब कभी परेशानी और गम में होता है या कोई ऐसी बात पेश आए जो उसे पसंद ना हो, तो चेहरे से ही पता लग जाता है कि ये इस वक्त खुश नहीं है। तो वो जो मुनकबिज होना है, तुर शुरू होना, यानी चेहरा चेहरे पर नागवारी के आसार आ जाना, इसको अरबी में कहते हैं इरन फता, इरन फता फुलान, उन फुलान के चेहरे पर नागवारी आ गई, वो तुर शुरू हुआ, मुनकबिज हुआ। तो मुनकबिज होने का माना भी चेहरे पर नागवारी के असरात आना, और तुर शुरू होने का भी यही माना है। आगे देखिए, एक फहर्रा इंतहाई तारीकी में सितारा चमक गया, देखा ये, देखो इक्तेजाब है, इक्तेजाब दोनों में, यानी मुजर्रद में ये इस्तेमाल ही नहीं है मादा। नंबर तीन है मुतावात फालला, यानी रुबाई मुजर्रद के मुताबिअ होना, जैसे साजर तुहु फस अन जारा, मैंने उसका खून बहाया पस वो बह गया। तो पहला मुताअद्दी है और दूसरा लाजिम, और ये पहला कौन सा है, फालला, साजर तुहु फालल तुहु भाई दहरज तुहु, बात समझ में आ रही, फाल। और आगे देखिए और मिसाल, तम अंतुहु फतमा अन्ना, मैंने उसको मुतमइन किया पस वो मुतमइन हो गया, तम अंतुहु फतमा अन्ना। तो ये भी मुताविअ है किसका, बाबे फालला का, पहला बाब फालला है और दूसरा कौन सा है, तो इतमा अन्ना, ये क्या है, बाबे इफालल्ला है भाई। बात अच्छी तरह समझ में आ गई, चलिए बस भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा निसाब का जो हिस्सा था वो मुकम्मल हो गया। आप सब हजरात को भी मुबारक हो भाई, ये मुसीगा भी खत्म हुई और ये खासियात अबवाब भी मुकम्मल हो गई, ये सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई, कोई मुश्किल तो नहीं, और इनको आपने खूब अच्छी तरह याद करना है भाई, खूब अजबर करना है कुल हुवल्लाह की तरह, ये बड़ी कीमती चीजें हैं। और ये जो मुख्तलिफ खासियात जिक्र हुई, फिर इन्हीं के मुताबिक तर्जमा भी करना है, जहां जहां पर ये सीगे आएंगे तो उसके मुताबिक आपने तर्जमा करना है भाई। जी कुछ कहना था, दो बातों की खास तौर पर मैं आपको नसीहत कर देता हूं, जो वाले साहब रहमहुल्ला अक्सर हमें फरमाते भाई। वैसे तो हर चीज में नसीहत फरमाते थे, लेकिन दो बातों पर जरा ज्यादा जोर देते थे, वही मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं। बस दो बातों का खास तौर पर ख्याल रखना है। एक तो ये कि लुक्मा हराम से अपनी हिफाजत करनी है, हराम माल से अपनी भी, अपने घर वालों की भी, और अपनी अगली आने वाली नस्लों की भी आपने हिफाजत करनी है। याद रखो, उलमा फरमाते हैं ये हराम की इतनी ज्यादा बदबू होती है कि किसी मुर्दा जानवर की भी इतनी बदबू नहीं होती, लेकिन वो अलग है, अल्लाह ने पर्दे डाले हुए हैं, दिखाते नहीं है। और हराम का नुकसान बहुत ज्यादा है, ये नस्लों तक चलता है नुकसान भाई। तो हराम से अपने आप को बचाना, और हराम बजाहिर जल्दी से कहीं से पैसे मिल गए, देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि, लेकिन ये पैसे उसी तरह निकल जाते हैं भाई। कहीं कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई तकलीफ आ जाती है, कभी कुछ, वो पैसे उसी तरह खत्म हो जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं, और फिर उसकी जो नफूसत और बेबरकती है वो बाकी रह जाती है। तो हराम माल से अपनी हिफाजत करनी है भाई, जर्रे जर्रे से भाई। और आजकल लोगों ने हराम और हलाल का फर्क ही छोड़ दिया है, ये देखते ही नहीं है ये पैसा किस तरीके से आ रहा है। दुकानदार है, दुकान पर बैठा हुआ है, चीज बेच रहा है, और अब देखो बेचारा सारा दिन भी लगाता है, मेहनत भी करता है, लेकिन शाम को जब घर आता है तो सारा उसने हराम इकट्ठा किया होता है, और लोगों को वो कहता है कि मैं तो हलाल कमाता हूं, उसका अपना ख्याल होता है। हराम किस तरह होता है, वो सौदे के अंदर थोड़ा सा झूठ बोल देता है, बस फौरन कमाई हराम में बदल गई। मसलन गाहक ने कहा ये चीज मुझे 20 की ना दो भाई, 18 की दे दो। ये गाहक को कहता है भाई 19 में तो मैंने खरीदी थी, हालांकि उसने 19 में नहीं खरीदी, उसने तो सस्ती खरीदी थी। देखो थोड़ा सा झूठ मिलाया तो धोखा बन गया या नहीं, अब धोखा बन गया, और धोखे से जो भी कमाया जाए वो क्या होता है, हराम होता है। तो अब बेचारे ने सारा दिन दुकान पे गुजारा भी, और जिस जिसके साथ उसने इस तरह कोई लफ्ज झूठ बोलकर कहा, वहां धोखा आता चला गया और माल हराम होता चला गया। बात समझ में आ गई? तो अगर झूठ कहीं नहीं बोला फिर तो जायज है, फिर तो ठीक है। तो उसका बेहतरीन तरीका यह होता है कि लोगों को भी, जानने वालों को भी बताएं कि कोई चीज बेचने लगे, अगर ग्राहक ज्यादा सस्ती करने का कह रहा है तो बस उसको सिर्फ इतना कहें भाई इससे ज्यादा मैं सस्ती नहीं कर सकता, झूठ ना बोलो, झूठ बोलोगे धोखा बन जाएगा और वो हराम बन जाएगा। तो एक तो हराम से अपने आप को बचाएं, और दूसरा किसी को आपके हाथ से तकलीफ ना पहुंचे, किसी को आपके हाथ से तकलीफ ना पहुंचे भाई। आजकल ये मर्ज बहुत आम हो गया है, सब लोग एक दूसरे को तकलीफ देने में लगे हुए हैं, हद से ज्यादा एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं भाई, हद से ज्यादा। और फिर बड़े खुश होते हैं किसी को तकलीफ देकर, अपने साथियों में भी जिक्र करते हैं कि उसने मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाई थी, मैंने इतने गुना ज्यादा फिर उसको तकलीफ पहुंचाई, और कहकहे लगाते हैं और खुश होते हैं। हालांकि हदीस में तो आता है अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान सलामत रहें, महफूज रहें भाई। तो और जुबान, जुबान की लोग परवाह ही नहीं करते कि जुबान से, हमने कोई हाथ से तो नहीं किसी को मारा ना, जुबान से ही बात की है। याद रखो भाई, जुबान ही सबसे ज्यादा इंसान को जहन्नुम में ले जाने वाली है। एक एक चीज आपकी लिखी जा रही है भाई, और उसके मुताबिक जजा और सजा होगी भाई। जुबान को हम मामूली समझते हैं भाई, जुबान ही तो सबसे बड़ी चीज, जुबान से ही कोई कुफ्र शिर्क करे तो आप उसको काफिर और मुशरिक कह देते हैं या नहीं? और जुबान से कोई बीवी को तलाक दे तो तलाक हो जाती है कि नहीं? जुबान से ही अगर मसलन आजकल तो गुलाम नहीं है, जुबान से गुलाम को कह देते तू आजाद है तो बस वो आजाद हो जाता, बात ही खत्म, उसमें वापसी की कोई सूरत ही नहीं। और जुबान से इंसान तौबा वगैरह सब कुछ करता है, तो सारा अमल दखल जुबान का ही है, और हम समझते हैं शायद जुबान की तो कोई हैसियत ही नहीं, मैंने तो जुबान से ही बात की, चलो कोई बात नहीं। नहीं, नहीं। बात समझ में आ गई, बल्कि हाथ और हाथ का पहुंचाया हुआ जख्म तो भर जाता है और जुबान का पहुंचाया हुआ जख्म भरता नहीं है। किसी को आपने जुबान से तकलीफ दी वो हमेशा याद रहती है और दिल को तकलीफ पहुंचती रहती है। जिराहातु सिनानी लहलतियामु वलायल तामु माजरा हल्लिसानो। नेजों से जख्म किसी को लगा दो वो जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जुबान से किसी को जख्म दे दो तो वो ठीक नहीं होता। समझ में आया? और हां, तो किसी को तकलीफ, हंसी मजाक भी आपस में करो खुशगवार अंदाज में, दूसरे को जो पसंद हो, ऐसा मजाक भी ना करो जो जिससे दूसरों को तकलीफ होती है। तो हासिल ये कि बस एक तो अपने आप को हराम से बचाएं और दूसरा किसी को आपके हाथ से तकलीफ ना पहुंचे। मोमिन तो सरापा रहमत है, वो तो जहां जाता है लोगों को उसे खैर ही खैर पहुंचती है, फायदा ही फायदा पहुंचता है, किसी को तकलीफ और नुकसान नहीं पहुंचती भाई। तो अल्लाह ताला हम सबको इसके मुताबिक चलने की तौफीक नसीब फरमाए भाई। आइए भाई अब दुआ कर लें आखिर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ का तरीका याद रखें भाई, शुरू में दुआ के हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, उसके बाद चंद मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और फिर आखिर में भी आमीन हो और चंद दफा दुरूद शरीफ हो, इससे दुआ कबूलियत के करीब तर हो जाती है। आइए हम भी इसी तरीके के मुताबिक दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। سيدنا مولانا محمد وعلى اصحابه وبارك وسلم محمد وعلى اصحابه وبارك وسلم। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारे इस बैठने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमने इस मजलिस के अंदर एक किताब मुकम्मल खत्म की और दूसरी किताब का कुछ हिस्सा पढ़ा। ऐ अल्लाह हमारे इस पढ़ने और पढ़ाने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इसमें हमसे कोई कोताहियां हुई हो, ऐ अल्लाह कोई लग्जिश हुई हो, ऐ अल्लाह उन सबको माफ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस पढ़ने और पढ़ाने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको सुन्नतों पर अमल करने वाला बना। ऐ अल्लाह हम सबको सुन्नतों को फैलाने वाला बना। ऐ अल्लाह हम शिर्क बिदात और गुमराहियों से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको शिर्क बिदात और गुमराहियां मिटाने वाला बना। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह यकीन हमारे गुनाह बहुत ज्यादा, लेकिन ऐ अल्लाह आपकी रहमत तो बड़ी वसी है और ऐ अल्लाह बिलखसूस ये मजलिस भी यकीनन मुबारक मजलिस है जहां ऐ अल्लाह आपके दीन की दो किताबें पढ़ी गईं। ऐ अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इस मजलिस की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन हम आपके दरबार जलाल और जमाल में हाजिर हों तो इस तौर पर कि आप भी हमसे राजी हों और आपका हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे राजी हों। ऐ अल्लाह हमारे हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरे जितने तलामिजा हैं, ऐ अल्लाह इनको खुशियों वाली जिंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इनमें से हर एक को बड़ा आलिम और मुदर्रिस फरमा। ऐ अल्लाह सबको इखलास के साथ और हिकमत के साथ दीन का काम करने वाला बना। ऐ अल्लाह इनमें से हर एक को ऐसी शमा बना दे जिससे आगे मजीद लाखों शमाएं रोशन हों और ता क्यामत ये सिलसिला चलता रहे। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जितने हाजिरी जितने तलबा हैं, ऐ अल्लाह हम सब, ऐ अल्लाह हम सब की तमाम हाजतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मुश्किलात को हल फरमा। ऐ अल्लाह सबको सेहत और आफियत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह घरों में कोई बीमार है, अल्लाह उसको शिफा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सेहत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जो अजीज और अकारिब वफात को आ चुके हैं उनकी मगफिरत फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम हजरत शेख रहमतुल्लाह, ऐ अल्लाह उनके भी करोड़ा दरजात बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बना। ऐ अल्लाह उनकी तरह में कबूलियत और मकबूलियत नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारी लग्जिशात को मुआफ़ फरमा। ए अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा। ए अल्लाह इस फितने के जमाने में तमाम आलम के अंदर मुसलमान बड़ी तकलीफ में है, उन पर हर जगह जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ए अल्लाह तमाम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। ए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह उनको हिम्मत और कुव्वत नसीब फरमा। ए अल्लाह उनके लिए आसानियां फरमा। ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को फिर उरूज नसीब फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों को फिर दीन की तरफ लौटा दे। ए अल्लाह मुसलमान दीन से दूर चले गए, ए अल्लाह उनको फिर दीन की तरफ लौटा दे। ए अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को फिर उरूज नसीब फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जगह जगह हर जगह दुनिया में हर जगह मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म हो रहे हैं। ऐ अल्लाह कश्मीर है, फलस्तीन है, बर्मा है, अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है, चीन है, हर जगह मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म सितम किया जा रहा है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह सबकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह सब मुसलमानों की हिफाजत फरमा। खास तौर पर चीन के मुसलमानों के लिए तो खुसूसी दुआ करो, उन पर तो इतना जुल्म किया जा रहा है कि जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके शहर के शहर बिल्कुल वीरानों में बदल गए हैं, मुसलमानों को उन्होंने ऐसा मिटा दिया, खत्म कर दिया है। और तकलीफ की बात यह है तो दुनिया में जहां कहीं मुसलमानों पर जुल्म होता है उसकी खबरें अखबारात वगैरह में आ जाती हैं, लेकिन चीन में तो किसी खबर को भी बाहर तक नहीं पहुंचने देते। ए अल्लाह चीन के मुसलमानों की बिलखुसूस मदद और नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह उनको हिम्मत और कुव्वत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनके लिए फिर किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी और किसी मोहम्मद इब्न कासिम को भेज दे। ऐ अल्लाह जो उन पर जुल्म और सितम करने वाले हैं, ऐ अल्लाह उनको जलील और रुस्वा फरमा। ऐ अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे जो अजीज व अकारिब वफात पा चुके हैं, ऐ अल्लाह उन सब की कब्रें मुनव्वर फरमा, उनकी लग्जिशात से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हम सबका खातिमा ईमान पर फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको ईमान वाली कब्र नसीब फरमा। ऐ अल्लाह क़यामत तक हमारी आने वाली नस्लों के भी ईमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको वसी हलाल रिज़्क नसीब फरमा। ऐ अल्लाह क़यामत तक हमारी आने वाली नस्लों को भी वसी हलाल रिजक नसीब फरमा। ए अल्लाह हराम के जर्रे जर्रे से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह क्यामत तक हमारी आने वाली नस्लों की भी हराम से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मेरे जितने तलामिजा हैं, अल्लाह सबको खुशियां नसीब फरमा। ए अल्लाह सबको, ए अल्लाह सुन्नतों पर अमल करने वाला बना। ए अल्लाह सबको बिदात और गुमराहियां मिटाने वाला बना। ए अल्लाह सबको वसी हलाल रिजक नसीब फरमा। ए अल्लाह सबके हराम के जर्रे जर्रे से हिफाजत फरमा। और ए अल्लाह इनका क़यामत इनके फैज को मजीद बढ़ा दे। ए अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। मेरे लिए भी आप हजरात से दुआओं की दरख्वास्त है, कुछ बीमार भी रहता हूं और भी कुछ मसाइल हैं, तकालीफ हैं। दुआ फरमाए अल्लाह सेहत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, अल्लाह सेहत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो मुश्किलात और परेशानियां हैं दूर फरमा। ऐ अल्लाह हर फितने और आजमाइश से हिफाजत फरमा। और मेरी वालदा भी बीमार रहती हैं, उनके लिए भी दुआ की दरख्वास्त है। ऐ अल्लाह उनका साया हमारे सरों पर तादेर सेहत और आफियत और खुशी और मुसर्रतों के साथ कायम और दायम फरमा। ऐ अल्लाह हमें उनके खूब खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जितने हाजरीन हैं, तलबा हैं, ऐ अल्लाह इनके वालिदैन का साया भी इनके सरों पर तादेर सेहत आफियत खुशी और मुसर्रत के साथ कायम और दायम फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मुश्किलात हल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस पढ़ने और पढ़ाने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। बहुत से लोग भी दुआओं का कहते रहते हैं। ऐ अल्लाह आप तो आलिमुल गैब हैं, सबको जानते हैं। ऐ अल्लाह उन सब की मुश्किलात भी हल फरमा। ऐ अल्लाह उनकी तमाम तकालीफ और परेशानियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह उनके कामों में जो रुकावटें हैं उनको दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती के साथ दीन का काम करने वाला बना। ऐ अल्लाह اللہ اخلاص و حکمت کے ساتھ دین کا کام کرنے والا بنا. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ تمام مشکلات حل فرما. اب دو تین منٹ تک آپ کے دل میں جو جو دعائیں ہوں وہ خاموشی سے مانگ لیں. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اس مدرسے کے لیے بھی دعا کریں. اے اللہ اس کو تا قیامت دین کا عظیم مرکز فرما. اے اللہ بلکہ دین کے مراکز کے لیے اس کو مرکز بنا دے. اے اللہ دین کے مراکز کے لیے اس کو مرکز بنا دے. اے اللہ ہر شر اور فتنے سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کو ہم سب کے لیے عظیم صدقہ جاریہ فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ آپ نے ہمیں نیک حاکم نصیب فرمایا. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو اپنے وعدے احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیے جی ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی سب کو مبارک الحمدللہ.